ओके मैम, तो मैम शुरू करने से पहले आपका एक छोटा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं लेना चाहूंगी. आपका पूरा नाम, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और आप आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है?
जी बिल्कुल। हायर डिग्री के लिए डबल एमए हूँ मैं, हिंदी में, हिस्ट्री में, एजुकेशन में बीएड एंड एमए एंड एजुकेशन में पीएचडी है हमारा।
ओके मैम.
मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है पटेल बीएड कॉलेज, लोधमा, खूंटी, रांची, झारखंड।
ओके
एनपीसी से रिकॉग्नाइज है एंड रांची यूनिवर्सिटी से अफिलियटेड है।
ओके मैम.
मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन है हमारा, अभी पीएचडी
हाँ
यूसी से है
हाँ
और 7 इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश हो चुका है, एक बुक भी लिखी हूँ बीएड का
ओके जी.
और कॉन्फ्रेंस सेमिनार 10-20 है।
और
ये
मैम, ये जो मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी है, नहीं कॉलेज है, ये एडेड है या अनएडेड है?
सिंगल यूनिट है, सिर्फ बीएड कोर्सेज में चलते हैं। एडेड मीन्स मैं समझी नहीं।
एडेड मतलब गवर्नमेंट इसको ग्रांट देती है या प्राइवेट है?
नहीं, सेल्फ फाइनेंस है, सिर्फ
सेल्फ फाइनेंस है. अच्छा.
ये यूनिवर्सिटी हमें एफिलिएशन देता है कि आप कैसे सीबीएसई स्कूल हुआ उसको आप चलाइए, लेकिन स्कूल के बच्चे से जो फीस आते हैं वो
हाँ.
फीस से ही टीचर को पेमेंट होता है।
ओके, तो सेल्फ फाइनेंस है. ओके मैम. ओके. और मैम, आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है?
हमारा है एजुकेशन, टीचर एजुकेशन।
टीचर एजुकेशन. अच्छा. और मैम, आप बीएड में कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं?
लेकिन प्रिंसिपल वीक में एक दिन क्लास लेता है
कौन
और
सा?
बाकी एकेड कोई भी सब्जेक्ट जो हमें, मतलब जैसे टीचर अब्सेंट हो या कोई भी जो हम चूज करें, कोई भी कोर्स हम
अच्छा
पढ़ा सकते हैं, जो
अच्छा
कोर कोर्स हुआ।
ओके. और आप इस इंस्टीट्यूट के साथ पिछले 10 साल से हैं, राइट?
जी
जी. ओके मैम. और आप कह रहे थे मैम आपके यहाँ पे सिर्फ बीएड कोर्स है, राइट?
जी जी
और कब से है ये मैम आपके इंस्टीट्यूट में ये कोर्स?
2012
और
2012 से है।
2012 से है. और मैम, एनसीटी का अप्रूव्ड इनटेक कितना है, मतलब
100
100? और मैम, लगभग 2019 और 2020 में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया होगा बीएड में?
700-800 पास आउट हैं, अभी 200 करेंट में काम, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं।
तो मतलब 2019 और 2020 में 100-100 बच्चों ने ले लिया था एडमिशन.
हाँ, अभी 200 बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में।
ओके मैम. ओके. तो मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि किस प्रपोर्शन के बच्चे आपके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं? मतलब आर्ट्स से कितने बच्चे होंगे, कॉमर्स से कितने होंगे, मैथमेटिक्स के स्ट्रीम से कितने होंगे?
देखिए, पहले क्या था, 2012 से लेके 2015 तक
हाँ
सब्जेक्ट बाउंडेशन था, 10 10 सब्जेक्ट, मतलब 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 10 साइंस, 10 ज्योग्राफी, 10 मैथमेटिक्स, 10 कॉमर्स, ऐसे आते थे। लेकिन 2015 के बाद कोई रेगुलेशन नहीं है, आप 100 के 100 बच्चे, उसके बाद आप 100 से आते हैं मैथ्स के, तो 100 ले सकते हैं। मैथ्स के ही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें मेरिट बन के आता है कोई भी बच्चे हम लोग ले सकते हैं। अब
हाँ राइट. तो मैम, फिर अभी अगर आप देख रहे हैं 2015 के बाद, तो कौन से स्ट्रीम से ज्यादा बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं एडमिशन लेते हुए? साइंस
साइंस
के ज्यादा है. कितने होंगे मैम लगभग?
100 में 60 साइंस के होंगे।
60 साइंस के होंगे. ओके. और उसके बाद फिर?
बाकी आर्ट्स वाले सारे हैं, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जितने भी आर्ट्स में आते हैं, टीआरएल, फिजिक्स।
अच्छा, बाकी सब आर्ट के. ओके मैम. और फिर साइंस और मैथमेटिक्स के काफी कम है क्या?
नहीं, साइंस में ही सारा वो इंक्लूड हो जाता है, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, सारे मैथ में आते हैं, एनडीए,
अच्छा, तो आप
एमटेक
कह
वाले।
रहे मैथ्स और साइंस लगभग 60 आउट ऑफ 100 होंगे और बाकी सब आर्ट्स होंगे. अच्छा. ओके. और मैम, आप आपके बच्चों का एकेडमिक क्वालिफिकेशन की क्वालिटी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब आपके यहाँ पे आने वाले बच्चे जब एडमिशन लेते हैं, तो तो कितने बच्चे फर्स्ट क्लास मार्क्स उनको मिलना हुआ होता है ग्रेजुएट?
क्या है कि 2015 से पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते थे पेपर में, 2018 तक तो एडवर्टाइजमेंट देते थे। हम लोग यहाँ 100 सीट है तो हमारे यहाँ 1000 अगर फॉर्म आया है तो उसमें से हम लोग मेरिट निकालते हैं 100, वही 100 को हम लोग लेते हैं, तो उसमें से हाई क्वालिफाई वाले ही आगे रहते हैं।
ओके ओके।
और अभी 2018 के बाद 19 से JSSC कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कॉलेज चूज करते हैं, कॉलेज चूज च्वाइस के बाद जिस कॉलेज को च्वाइस करते हैं उसमें उनका एडमिशन होता है। तो अभी आई थिंक 85 बोर्ड में 78 ग्रेजुएशन में जो मार्क्स लाए हैं उन्हीं का एडमिशन हुआ है।
तो 75 एंड अबव परसेंटेज के बच्चे ही आपके यहाँ पर आते हैं?
हाँ, अभी करेंट में।
अच्छा।
हाँ, लेकिन ST जो कैटेगरी होती है ना, जनरल ST OBC हमारे यहाँ झारखंड में ज्यादा चलता है, तो ST कैटेगरी वाले बच्चे थोड़ा कम मार्क्स वाले होते हैं।
राइट, ओके। तो उनका परसेंटेज कितना होगा मैम, मतलब एकेडमिक परसेंटेज?
उनका 50 to 60 and 65।
ओके, समझ गया मैम। ओके। और मैम आपका असेसमेंट क्या है आपके बच्चों के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का?
देखिए, हम लोग जितना को कुरिकुलम एक्टिविटी होता है ट्रेनिंग के अलावा, ये तो आपका BEd डिग्री हो गया, जिसको आप कोर्स है जो आपको कैसे पढ़ाना है क्या है, उसके अलावा हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं जिससे बच्चे उसको लर्न करते हैं, फिर उसको बाद में यहाँ से जाने के बाद उसी को टीचर बन के अप्लाई करते हैं। तो बताया जाता है कि मतलब एक टीचर को कैसे रहना है, कैसे पढ़ाना है, तारीख को प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, स्टेज में मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सेमिनार वगैरह, नेशनल सेमिनार अपने कॉलेज में हम लोग करते हैं।
हाँ।
क्या हर वीक में एक एक्टिविटी होती है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज, हर कंपटीशन होते रहता है, पोस्टर कंपटीशन हुआ, मतलब बहुत सारे होते हैं जिससे कि हम लोग उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो यहाँ से निकल के जाए और अच्छा दे।
राइट। ओके मैम, समझ में आ गया। तो मैम आपके स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोफाइल बाकी कॉलेजेस के एकेडमिक प्रोफाइल के साथ अगर कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो आपका क्या राय होगा?
देखिए, हम मेरा मानना है कि हम बेस्ट देते हैं तो हमारे बच्चे ही बेस्ट हैं, तो और कॉलेज से तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग नहीं है हमारे स्टूडेंट। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहेंगी कभी इंटरव्यू या कोई कुछ भी, तो आप हमारे तरफ से फ्री हैं।
नहीं मैम, ऐसे उनके साथ इंटरव्यू तो नहीं, बस मैं जानना चाह रही थी कि क्योंकि बाकी कॉलेजेस भी होंगे और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होंगे, आपका तो प्राइवेट है, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि बाकी कॉलेजेस के बच्चों का एकेडमिक प्रोफाइल कैसा होगा?
नहीं, मुझे दूसरे को मैं पूछती भी नहीं और लोग सच बताते भी नहीं।
अच्छा, राइट, ये भी है मैम।
तो लेकिन हमारे यहाँ 100 में 97 डिस्टिंक्शन से पास होते हैं। अभी 18-20 के स्टूडेंट है, मात्र 3 ही स्टूडेंट है जो कि 71 या 2 परसेंटेज लाए हैं BEd में।
ओ राइट, ओके ओके मैम।
और 50% बच्चे CBSE बोर्ड के इस बार हैं और 50% बच्चे जैक बोर्ड, मतलब प्राचीन जैक बोर्ड के हैं।
हाँ राइट। तो मैम वुमेन और मेन का रेशियो क्या होगा?
90% वुमेन रहती है, लड़की महिला जो भी कहिए, BEd की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो महिला एंड गर्ल जो भी फीमेल रहते हैं 10% बॉयज रहते हैं।
अच्छा अच्छा, राइट। तो मैम फिर इनका एडमिशन आपके कॉलेज में होता कैसे है?
नहीं तो को एजुकेशन है ना हमारा कॉलेज।
नहीं नहीं, मतलब ये कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है या आप?
अब होती है JSSC झारखंड कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जाम में लोग अप्लाई करता है, फिर उसमें लोग बैठते हैं, उसके बाद क्वालिफाई होते हैं और जो पास होते हैं वही एडमिशन ले सकते हैं।
अच्छा, ओके मैम। और मैम कितने बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस टीचिंग लेते हैं एक बार एडमिशन होने के बाद?
60 प्लस ही जाते हैं।
और उनका क्या उसको कहते हैं प्रोफाइल क्या होता होगा, मतलब क्या करके आए होंगे बच्चे?
मैक्सिमम ग्रेजुएशन, आपको इसकी जो योग्यता है जो ग्रेजुएशन की होती है, आपका कम से कम 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों का एंड 45% होना चाहिए ST कैटेगरी का जो होता है। फिर कम रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकती।
अच्छा 50% जनरल है और 45
एससी।
एससी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल कैटेगरी के हूँ और मेरे पास ये पास परसेंटेज है, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अगर मैथमेटिक्स और साइंस नहीं होगा, तो क्या मैं ये दोनों पेडागॉजी सब्जेक्ट्स ले सकती हूँ बीएड में?
अगर स्कूलिंग सब्जेक्ट आर्ट्स का दो है या साइंस का दो है, अगर साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो साइंस का दो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, अगर इसी में दो है उसमें 50% है तो आप ले सकते हैं। आर्ट्स है अगर उसमें आपका पासिंग सब्जेक्ट भी है, और अगर आप 50% कोई दो स्कूलिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश हिंदी ज्योग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स है तो आप ले सकते हैं।
ओके मैम, समझ में आ गया। तो मैम इन बच्चों का मतलब पहले बीएड 1 साल का था, राइट? फिर उसके बाद 2 साल का हो गया, तो 2 साल का होने के बाद आपको बच्चों के प्रोफाइल में कुछ चेंज नजर आया है क्या? किस तरीके के बच्चे एडमिशन लेते हैं अभी?
देखिए पहले क्या था कि 1 साल का था तो मतलब जैसे शिक्षा विद्वान जो इंटेलिजेंसी है उन लोगों की, मेरा मानना है कि उन लोगों ने लगा कि 1 साल का है कोर्स तो सब कोई एरू बेरू सब कोई कर ले रहा है, दो साल का कोर्स कर दिया है, इसमें एक्टिविटी ज्यादा है और करिकुलम कम है,
अच्छा
तो इससे यही है कि आप परफेक्ट मतलब ट्रेंड टीचर बन के निकलिएगा। 1 साल वाला था उसमें आपका एडमिशन लेते हैं, जो भी प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं आपका सारा टाइम पास हो जाता
ओके ओके राइट मैम। तो मैम अभी इन बच्चों का जो आपके यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, इनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या होगा?
है। सोचिए, बोले आवाज नहीं सुनाई दी,
क्या कह रहे हैं मैम?
नहीं फिर से रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई।
हाँ
मैम एक्सप्लेन
सॉरी,
बताइए।
मैं बोल रही हूँ कि इन बच्चों का सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या होगा?
देखिए हमारे यहाँ स्टाइपेंड जो स्कॉलरशिप मिलता है ई कल्याण से, जो एसटी बच्चे हैं अधिकतर इसी के भरोसे आते हैं, ठीक है ना?
ओके
तो इनको ई कल्याण की तरफ से 38,000 पर ईयर 2 ईयर में मिलता है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है जी,
ई कल्याण है क्या स्कॉलरशिप का ना?
हाँ मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपको बोनाफाइड बना के हम लोग देते हैं फीस स्लिप के साथ, तो बच्चे को मिलता है।
ओके और ये आप कह रहे 38,000 पर ईयर मिलता है इसको?
हाँ जी, और हॉस्टल वगैरह में रहती है तो उससे ज्यादा भी मिलता है,
अच्छा ओके
बट लेकिन ये एससी ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट को सिर्फ मिलता है।
ओके ओके। तो मतलब आपके यहाँ पे ज्यादा करके बच्चे एससी एससी ओबीसी के ही आते हैं?
जी एसटी बच्चे ज्यादा रहते हैं क्योंकि हमारा झारखंड है एसटी का बेल्ट है, तो यहाँ बच्चे ज्यादा रहते हैं,
अच्छा राइट। और
और ये पिछड़ा हुआ है तो इन लोग को पढ़ना भी जरूरी
तो मैम अगर इन बच्चों ने टीचिंग नहीं लिया होता या बीएड का कोर्स नहीं लिया होगा, तो इनके ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस क्या होंगे आपके हिसाब से?
है। अगर ये बीएड टीचिंग टीचर ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो ये टीचर नहीं बन सकते हैं, चाहे प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी में हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि रूल 2019 के अकॉर्डिंग
हाँ
कोई भी स्कूल प्राइवेट या सरकारी में विदाउट बीएड या कोई भी टीचर ट्रेनिंग बिना आपको परमिशन नहीं होगा।
राइट राइट।
तो कभी बच्चे हो सकता है कि ये अगर तेज है तो कंपटीशन का तैयारी करेंगे, और तेज नहीं है तो फिर घर में बैठ के हाल पर बनेंगे आगे चलकर।
ओ राइट। तो मैम फिर इनका की मोटिवेशन क्या है बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेने का?
इनका मोटिवेशन है इनको टीचर बनना है, ये हम जैसे साइंस बैकग्राउंड से है तो इनको पता है कि हम टीचर बनेंगे और इसके लिए बीएड करते हैं, सिर्फ टीचर बनने के लिए। अगर बीएड कोर्स कर रहे हैं तो सिर्फ टीचिंग लाइन में इनको जाना है।
ओके ओके। तो मैम बच्चों को इस बीएड कोर्स के अंदर का जो करिकुलम है, वो करिकुलम में से सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आती होगी?
देखिए ये क्या है कि मेच्योर बच्चे रहते हैं, मतलब स्टूडेंट रहते हैं, शादीशुदा भी रहते हैं, अनमैरिड भी रहते हैं, अधिकतर अनमैरिड रहते हैं, 10-20% महिलाएं रहती हैं
हाँ
जो करती हैं। तो इसमें होता है क्या है कि एक होता है हमारा इंटर्नशिप बीएड में, वो तो 4 मंथ का होता है, फर्स्ट ईयर में 1 मंथ का, सेकेंड ईयर में 4 मंथ का है। तो इसमें आपको गवर्नमेंट के या प्राइवेट के जो भी एफिलिएटेड स्कूल है उसमें हम लोग बच्चे को अलॉट करते हैं, और वहाँ बच्चे 4-5 मंथ तक पढ़ाते हैं।
ओके ओके।
लेसन प्लान बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, उस प्रोग्राम पूरा उसमें उनका पढ़ाने से पहले लेसन इंक्लूड रहता है, उसको पढ़ाते हैं
हाँ,
4 मंथ तक।
हाँ,
और उनको पढ़ाने से पहले हम लोग कॉलेज में माइक्रो टीचिंग देते हैं,
और
तो कुछ अध्ययन जिसको बोला जाता है,
हाँ,
मतलब 5 से 10 मिनट का। तो जब तक वो लोग ट्रेन नहीं हो जाते हैं पढ़ाने में कौन सी स्कीम, कौन सी मेथड यूज किया जाता है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है,
हाँ,
ये वगैरह वगैरह, हम लोग उन लोग को 15 दिन तक मतलब एक दूसरे को पढ़ाते हैं, क्लास में बाहर जाते हैं, स्टूडेंट आते हैं बोर्ड में स्किल अपना ये करते हैं,
हाँ,
जब परफेक्ट हो जाता है हम लोग को लगता है कि इन लोग को ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए भेजना चाहिए लेसन प्लान के लिए,
हाँ,
ताकि जिस स्कूल में जा रहे हैं वो बच्चे को ये अच्छे से पढ़ा पाए, उनका करियर बर्बाद ना कर पाए।
राइट राइट।
तो ये जो करिकुलम का पार्ट है ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट,
तो इसको
बाकी एक्टिविटी होती रहती है वो अलग है।
अच्छा अच्छा ओके। तो फिर इस ये तो एक इंटर्नशिप हो गया, तो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी इसी को कहते हैं, राइट?
जी जी
जी। तो इन दोनों के अलावा मतलब अब ये तो चीजें हो गई जो उनको पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बच्चों को नहीं पसंद है करिकुलम में?
तो नहीं पसंद है, लेकिन जो आपको मेजर है जो करना है वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अगर आपका करिकुलम में वो आता है तो आपको करना ही है।
हाँ, करना
लाइए,
वो तो है, मतलब करना तो है ही, लेकिन ऐसा होगा ना कि ये चीजें मतलब बच्चों को नहीं पसंद आती है, दिखाई देता है, मतलब करना तो पड़ता ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि समथिंग्स दैट दे लाइक एंड समथिंग्स दे डोंट, तो ऐसा कुछ होगा क्या जो उनको करिकुलम में नहीं पसंद है?
जैसे बहुत कई तो मान लीजिए कंपटीशन कर रहे हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना है, सबको स्पीच देना पसंद नहीं है।
अच्छा,
तो बहुत उस दिन क्या करें, अब्सेंट हो जाते हैं।
हाँ,
तो ऐसी स्थिति में हम डेट नहीं बताते हैं, सडनली वो दिन प्रोग्राम हॉल में सर कहते हैं और सबको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी, आप खराब करो अच्छा करो कुछ
हाँ,
भी करो, मोटिवेट करते हैं उन्हें कि, और धीरे धीरे होता है क्या, वो जाने से पहले पूरा ट्रेंड हो जाते हैं और फिर अपनी इच्छा से वो लोग आते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी।
राइट राइट। तो मैम ओवरऑल अगर बच्चों को ये 2 साल के बीएड प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो आपके हिसाब से उनकी क्या राय होगी?
उनकी राय कि बीएड सबसे अच्छा, मतलब आपको टीचर बनने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप सीखने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये।
ओके मैम। और मैम इन बच्चों का ओपिनियन क्या है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना उसको लेकर?
हमारे बच्चे जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर वाले हैं तो फोन वगैरह करते हैं कि मैम अपियरिंग नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपियरिंग होते हैं और बहुत सारे बच्चे टीचर क्वालिफाई हुए हैं।
अच्छा, और मैम मतलब ये मतलब जब ये बच्चे आते हैं बीएड के प्रोग्राम में और 2 साल के बाद जब आपके यहाँ से निकलते हैं तो आपको इन बच्चों में क्या चेंज नजर आता है?
ये बच्चे आते हैं तो ठीक से ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनका हुआ रहता है, ना ही बोल पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन मतलब हेजिटेशन ना अच्छे से खड़े, लेकिन जब ये निकलते हैं तो इनमें कॉन्फिडेंस रहता है।
ओके ओके। और मैम स्कूल से आपको कोई फीडबैक मिलता है क्या स्टूडेंट प्रेपरेशन के तौर पे?
यस यस जी, हमें जब भी मैं कहीं मीटिंग में जाती हूँ जैसे जीओ को मीटिंग में या कहीं वहाँ कोई जान पहचान रहते हैं तो, या जिनका स्कूल रहता है तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो,
हाँ,
तो बोलते हैं कि आप ही के बच्चे हैं या आपके पैर छूते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और प्राइवेट स्कूल में भी है, सफायर हो गया, डीएवी हो गया वगैरह में हमारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं अभी।
अच्छा अच्छा। तो लेकिन इनके प्रेपरेशन के तौर पे इनको कोई फीडबैक मतलब आपको मिलता है क्या कि किस तरीके से प्रिपेयर करके बच्चों को भेजे?
एक हमारे यहाँ काउंसलर है ना, और एक मीटिंग भी बनती है, तो हम लोग टाइम टू टाइम उन लोग को पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग वाला काम भी करते हैं।
ओ,
कि आपको कौन सा बुक चाहिए और कौन सा बुक लेना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सब हम लोग इनके रहते करते हैं। और हम लोग का एलुमनी मीट भी बना हुआ है जिसके थ्रू बच्चे हर ईयर आते हैं अपना ये शेयर करके जाते हैं, तो बताते हैं किस तरह पढ़ना चाहिए।
ओके एक्चुअली वो
और हम
ही
लोग के कांटेक्ट में भी रहते हैं,
हाँ
जैसे गाइडलाइन लेते रहते हैं।
ओके ओके तो एक्चुअली मेरा वही प्रश्न था, तो आपने खैर कह ही दिया। तो आपके पास अलुमिनाई मीट अलुमिनाई का ग्रुप है राइट? मतलब बच्चे जब
यस
पास आउट होके जाते हैं तो वो आपके साथ टच में रहते हैं।
हाँ, हर पर ये मतलब हर ईयर का एक जो दिन हम लोग का डेट डिसाइड है, बच्चे आते हैं, अपना जो भी है शेयर करते हैं और बताते हैं, मिलते हैं और दूसरों से अनुभव एक्सपीरियंस को ये करते हैं।
अच्छा, लेकिन ये बच्चे जो है वो कोर्स से रिलेटेड कोई फीडबैक देते हैं क्या आपको?
बिल्कुल, इनको टीचर बनना है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, जो अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको 80-85 हजार सैलरी मिल रही है। वो फीडबैक देते हैं कि और जॉब से बेटर देन टीचर ट्रेनिंग दिए है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि छुट्टियां भी बहुत रहती है और रिस्पेक्ट भी बहुत रहता है।
हाँ, ओके मैम। तो मैम पिछले 2 से 3 बैचेस में कितने बच्चों ने सीटेट या टेट के लिए फॉर्म भरा होगा?
90% बच्चे अप्लाई करते हैं, 50% बच्चे क्वालिफाई होते हैं एक बार में, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे करके करते
अच्छा, और मैम आपका इंस्टीट्यूट टीईटी के प्रेपरेशन के लिए कोई सपोर्ट करता है क्या बच्चों को?
नहीं, बस हम लोग टीचर गाइडलाइन देते हैं कि जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, लेक्चरर बनना है, तो वो अगर एजुकेशन में है तो बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं, बीए के बाद एमए, एमए के बाद नेट क्वालिफाई हो सकते हैं और फिर पीएचडी कर सकते हैं।
अच्छा, तो ऐसा गाइडलाइन है
जी
जी। तो मैम आपके यहाँ पे मतलब 90% में 50% अगर बच्चे पास आउट होते हैं तो आपका रेट काफी हाई है पासिंग का, लेकिन काफी सारे कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे पासिंग का रेट काफी कम होगा, तो आपके हिसाब से रीजन क्या हो सकता है इस इन डिफरेंस के लिए?
उसके लिए रीजन यही हो सकता है, या तो अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आप, ये मेरा पर्सनल और जो पब्लिकेशन दोनों राय है, तो एक्चुअली आप देखिएगा प्राइवेट में होता क्या है कि कुछ कम पैसे के लिए जो भी प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, कुछ ऐसे टीचर रख लेते हैं जिनकी स्किल अच्छी ना हो, जो ठीक से अपना करिकुलम कोर्स पढ़ा ना सके, कुछ पैसों के लिए अगर करते हैं, तो जब टीचर ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चे तक बेसिक पहुंच नहीं पाएगा, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है।
ओके
तो
ओके
हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं नेट पीएचडी क्वालिफाई है।
ओके राइट राइट। तो मैम आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनका बीएड होने के बाद मतलब करते क्या है? मतलब पिछले 2 साल के अगर बैचेस में देखा जाए तो कितने बच्चों ने एक्चुअली जॉब के लिए जॉब ढूंढी है?
40% बच्चे तो एंगेज हो जाते हैं, मतलब
जॉब
जॉब
में?
मिल जाता है उनको कोई कंप्लीट होने के साथ, और बाकी जो है वो जॉब की तलाश में है या जॉब के लिए अच्छी जॉब मिल जाए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनकी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट अधूरी है वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं।
अच्छा, और मैम ये किस तरीके के स्कूल्स में इनको जॉब मिलती है?
देखिए ये होता क्या है ना कि हर कॉलेज हर स्कूल में स्टूडेंट एवरेज एक्सीलेंस एंड इसी चीज टाइप के रहते हैं, तो बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर वो हाई क्वालिफाई और काफी ये हैं तो उनको, जैसे बहुत सारे स्कूल हमारे बच्चे बाहर भी, दुबई में भी एक दो बच्चे हैं, बेंगलोर में भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी सफायर इंटरनेशनल स्कूल वगैरह है, और कुछ बच्चे हैं गवर्नमेंट चले गए हैं जो बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल उनका है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत हाई फाइव है, इकोनॉमिकल मतलब बहुत हायर वाले हैं, तो लोग को प्राइवेट पसंद है, तो अच्छे अच्छे स्कूलों में वो लोग जाते हैं।
अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी कम बच्चे हैं क्या?
गवर्नमेंट स्कूल में है बच्चे हैं, अधिकतर चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में ही जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अक्सर होता है कि 1 to 7 क्लास लेने पड़ते हैं, और अब गवर्नमेंट में जब जाएगा तो मुश्किल से 1 to 4 ऐसे कुछ क्लासेस होते हैं।
अच्छा, तो मैम इन बच्चों को जॉब्स मिलती कैसे? मतलब आपके यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है क्या?
हाँ जी, प्लेसमेंट सेल है हमारे।
अच्छा, तो वहां पे फिर वैकेंसीज वगैरह आप बताते हैं या फिर स्कूल जाते हैं?
एक्चुअली में हमारे चार पांच स्कूल के सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल का कॉन्टेक्ट है, जब उनके यहाँ वैकेंसी आती है,
हाँ
हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल होता है, तो जो पास आउट वाले हमारे ग्रुप बने हुए हैं,
हाँ
तो उन ग्रुप में मैं मैसेज कर देती हूँ कि अपना रिज्यूम लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, और पेपर में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि वहाँ प्लेसमेंट होने वाली है।
अच्छा, और फिर स्कूल्स आते हैं आपके इस कॉलेज में।
हाँ, स्कूल आते हैं सेक्रेटरी, और जो हम लोग एक हमारे कॉलेज से हम रखते हैं और एक और टीचर रहते हैं, वो अपने टीचर एक ले आते हैं एक्सपर्ट, और फिर उनका जो भी रैंक बनता है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे चुन के ले जाते हैं।
ओके मैम, ओके। तो मैम हमने ये सुना है कि जो बीएड के बच्चे हैं जो पास आउट होके जाते हैं स्कूल्स में, तो उनको यूजुअली जो लोअर ग्रेड के बच्चे होते हैं ना, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ के, उनको पढ़ाने के लिए मिलता है, और उसके बाद फिर वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या ये सच है?
नहीं, वो आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको +2 मिलेगा, और अगर आप मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन आपकी पढ़ाने की स्किल ठीक नहीं है, तो कुछ दिन तक आपको, 1-2 ईयर तक आपको जूनियर क्लास देते हैं ताकि आप अपना ये कर लें, फिर सीनियर क्लास में उसको कन्वर्ट कर देते हैं।
ओके, लेकिन क्या बीएड के बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्किल पढ़ाया जाता है उनके बीएड में?
नहीं, छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बीएड नहीं है, उसके लिए डीएलएड है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है डीएलएड लेवल का, वो होता है इंटर के बाद वो पढ़ाई करता है, 1-6 के लिए वो किया जाता है।
राइट राइट। तो बड़े बच्चों मतलब जो बीएड के लिए आते हैं, उनको छोटे बच्चों को पढ़ाने का स्किल नहीं आता है?
नहीं, उनके लिए वो स्किल नहीं है, उनके लिए अलग मेथड वगैरह यूज होता है जो कि बच्चों के लिए होता है, टॉफी दे के, गाना गा के, डांस करके, एक्टिविटी करके, ये सब बीएड में नहीं है, बीएड हायर में आ जाता है।
राइट मैम। तो मैम जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम 100 में से देखा जाए तो कितने बच्चों को एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स मिलता है?
25
ओके। और मैम मतलब आपने कहा था कि रिक्रूटमेंट सेल है, और आपका लेकिन किसी प्राइवेट स्कूल के साथ अफिलिएशन है क्या?
नहीं, प्राइवेट स्कूल के साथ एफिलिएशन नहीं है, हम लोग जो एफिलिएशन जो स्कूल है उनकी हम लोग लेटर रखते हैं, परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही इंटर्नशिप वगैरह के लिए ये सब प्रोसेस करते हैं।
ओके ओके। और मैम प्राइवेट स्कूल में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी बच्चों की?
ये तो उनका मैनेजमेंट तय करता है, पेपर में तो आता है एज ए एनसीटी नॉर्म, एज ए सीबीएसई नॉर्म, लेकिन अब डेटा कितना है ये मैं नहीं बता सकती।
नहीं मतलब मुझे लगभग चाहिए कि मतलब 20,000 से शुरू होगा, 25,000 से शुरू होगा, बस
एक्चुअली में एक स्टूडेंट है वो बीएड पढ़ाने जाता है, तो उसका 22,000, पीएफ करके 20,000 मिलता है।
ओके। पर आप कह रहे कि जैसा स्कूल है उसके ऊपर डिपेंड करता है?
हाँ जी,
ओके राइट। तो मैम कितने आपके यहाँ पे बच्चे एनजीओज में काम करते हैं क्या, जो एजुकेशन सेक्टर में एनजीओज काम करते हैं ना?
करते हैं।
अच्छा, तो कौन से एनजीओज है और किस तरीका का काम करते हैं, अगर आपको कोई आइडिया हो तो?
हाँ, एनजीओ का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे कि वो एनजीओ टाटा के तरफ से है
हाँ
इतना पता है, और उस एनजीओ में जैसे कि आपका गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें आप जान ही रहे हैं कि सही समय पे गवर्नमेंट कभी, आपकी झारखंड सरकार है कभी ये लेती नहीं है, वैकेंसी लेती नहीं, तो जहाँ जहाँ सीट खाली रहता है वहाँ मैं देखती हूँ हमारे बीएड किए हुए बच्चे वो एनजीओ के थ्रू पढ़ा, मतलब जैसे कि 1:10 बजे से क्लासेस स्टार्ट होते हैं सरकारी में, तो जब 10 बजे से पहले वो बच्चे को बुलाया जाता है उस स्कूल में, और जो ये एनजीओ है उनको टीचर देते हैं और वही टीचर उनको पढ़ाता है।
अच्छा, राइट राइट ओके। तो मैम टीचिंग के अलावा इन बीएड के बच्चों के पास क्या ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन होगा एजुकेशन फील्ड में ही?
अगर बच्चे टीचर के अलावा अगर कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जेपीएससी, आईएएस, यूपीएससी जाना चाहते हैं, तो उनके पास तो ग्रेजुएशन की डिग्री ऑलरेडी है,
राइट
जैसे अभी हमारा एक टीचर डीपीएस डीएसपी बना है, तो एक सीजीएल अधिकारी बने हैं, ऑफिसर बने हैं,
ओके,
कुछ कुछ ऐसे बच्चे कोई बैंक मैनेजर बने हैं। तो इसके अलावा वे अगर इनके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो जा सकते हैं।
अच्छा ओके। तो मैम आपको और आपके मैम आप कह रहे थे कि आपके यहाँ पे कितने कितना टोटल स्टाफ है बीएड के लिए?
हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ 16 है, 15 है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल।
आपको मिलाकर 15 है?
नहीं 16, हम हमको मिला के 16 है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, फुल मतलब फुल 8-9 कैंडिडेट हैं।
अच्छा, पर टोटल 15 जो टीचिंग स्टाफ है बीएड के लिए और आप प्रिंसिपल है, राइट? अच्छा, तो मतलब आपके कलीग्स को कोई चैलेंजेस फेस होते हैं क्या बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे? मतलब अटेंडेंस का हो गया, रेगुलरिटी का हो गया, या मोटिवेशन नहीं है बच्चों में, इस तरीके के कोई चैलेंजेस फेस करते हैं क्या?
हाँ अक्सर फेस करना पड़ता है।
तो फिर मतलब और कौन से चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं?
जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब कुछ टाइम के बाद उनका एक्साइटमेंट बना रहता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि एक्साइटमेंट नहीं बना रहता है, बीएड तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, ज्यादा एक्टिविटी है कोई भी पढ़ लेगा, जिससे उनके मन में ख्याल आते हैं।
हाँ।
तो कुछ दिन बाद वो अब्सेंट कर देते हैं।
अच्छा हाँ।
हाँ, तो अब्सेंट करते तो ऐसी स्थिति में मैं खुद जाती हूँ क्लास और उन्हें पहली बात तो कि कंपलसरी है।
हाँ।
ऐसे कुछ गार्जियन आके बोलने लगते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ ऐसे होता है, पैसा देकर किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है बोलते हैं। तो हमारे पास एक ही तरीका रहता है कि आपके बच्चे घर में पढ़ेंगे तो भाई तब आप चीफ मिनिस्टर से बुलवाइए, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से बुलवाइए, मार्क्स तो हम नहीं देंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं अप्लाई करने देंगे। ऐसी स्थिति में बच्चे आते हैं।
राइट राइट। तो मैम इसलिए
मैं उनको मार्क्स नहीं देती हूँ जो अगर एब्सेंट ज्यादा कर दिए तो।
ओ ओ राइट। तो मैम इसके अलावा आपको और आपके कलीग्स को यू नो आपका टेन्योर या सैलरी या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो डेवलपमेंट की जरूरत होती है, इन सारी चीजों में कहीं पे कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ता है क्या?
नहीं, इसमें क्या है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका अपना एकेडमिक आपको प्रोफाइल बढ़ाना होगा। जैसे कि हम मान लीजिए नेट है, पीएचडी है, अगर हमारे पास पीएचडी नहीं होती तो हम प्रिंसिपल नहीं बन सकते, मेरे पास 20 साल का भी क्यों ना एक्सपीरियंस। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपना प्रोफाइल बढ़ाए अगर आगे बढ़ना चाहता है तो। बाकी मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है आपको नेट क्वालिफाई होना है, नेट क्वालिफाई होकर बैठे रहें।
राइट। लेकिन मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्सेज या वेबिनार्स या सेमिनार्स ऐसा कुछ अरेंज होता है क्या?
जी होता है, अपने कॉलेज में भी होता है और हम लोग दूसरे का भी अटेंड करते हैं।
अच्छा अच्छा। तो मैम एनसीटी के रेगुलेशंस भी होंगे, वहां से कोई दिक्कत आती है क्या?
हाँ, एनसीटी का रेगुलेशन है कि आपको टीचर के भी रेगुलेशन है एंड स्टूडेंट के भी रेगुलेशन है।
हाँ,
कि आपको नेट एंड पीएचडी एंड उनका जो पेमेंट है अपटूडेट होना चाहिए, जो बिल्डअप एरिया है वो वेल फिनिशिंग होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसको अकॉर्डिंग सारा मेंटेन करना पड़ता है और हो रहता है तभी आपको एफिलिएशन। रांची यूनिवर्सिटी यहाँ एनसीटी यहाँ करती है, रांची यूनिवर्सिटी को ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद एनसीटी देते हैं।
अच्छा, तो ये इंस्पेक्शन बॉडी जो है वो रांची यूनिवर्सिटी से आती है।
हाँ, लेकिन इनको एचआरडी ही देता है, एनसीटी ही इनको लेटर देती है क्योंकि वो आ नहीं सकती, तो इनको अधिकार दे रखा है।
राइट राइट। तो मैम आपका मतलब ये जो अभी 4 साल का नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बीएड का कोर्स आया है, अभी 4 साल का बात कर रहे हैं राइट अभी, तो उसके सिलसिले में आपका क्या व्यू पॉइंट है?
उसके सिलसिले में अभी तो उसको एनसीटी COVID-19 पेंडेमिक को देखते हुए बंद कर दिया है।
मतलब मुझे समझ में नहीं आया।
अभी ये ITP जो आ रही थी।
हाँ।
तो बंद कर दिया, फिलहाल स्थगित कर दिया है।
ये 4 साल
मेरा
तो
जी ऐसे एनसीटी के सजेशन बॉडी में मैं भी हूँ ये 4 साल वाले में, लेकिन
ओके
मेरा मानना है कि वैसे बच्चे जिनको इंटर के बाद क्या करना है उनको खुद पता नहीं है, और आप अगर उसको बीएड करने बोलिएगा तो बच्चे
ओके
तो ऑलमोस्ट 18-20 के होते हैं, तो उनको थोड़ी पता होता है कि हमको क्या करना है। ऐसी स्थिति में 50-50 अगर जिसको सिर्फ बीएड करना है उसको लगता है कि हम सिर्फ अच्छा टीचर बनेंगे, तो आई थिंक 4 साल में उस अच्छा टीचर बनकर निकलेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई सिर्फ शौक के लिए करता है, सिर्फ डिग्री के लिए करता है, तो उसके लिए तो इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन सिर्फ जो बीएड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि इंटर के बाद बच्चे को तो उतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है।
राइट राइट। तो मैम आपको क्या लगता है कि इससे टीचर्स की क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या अक्रॉस लेवल्स?
हाँ बिल्कुल पड़ेगा, अगर सिर्फ वो टीचर ही बन सकते हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से वहां मैंने कोर्स स्टडी किया है सिलेबस, आपको इंटर फर्स्ट ईयर से लेकर आपको फोर्थ ईयर तक आपका एक पेपर एजुकेशन है, टू पेपर एजुकेशन है,
हाँ
तो आप एजुकेशन से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ टीचर ही बनना एक माइंड मेकअप है, तो उनके लिए अच्छी बात है।
राइट। तो मैम ये वो ये भी कह रहे थे कि 2 साल का भी चलना चाहिए 4 साल का भी चलना चाहिए कॉम्पोजिट में, उसमें आपको क्या लगता है?
जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो पीजी कर चुके हैं, अगर सिर्फ 4 साल के कोर्सेज चलते हैं तो इनकी अगर टीचर बनने की ख्वाहिश है च्वाइस है तो ये कोई वंचित रह जाएंगे।
राइट राइट।
हाँ, और ऐसे बच्चे जिनको कि इंटर के बाद समझ में नहीं आता है कि हमको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज दो ही रहते हैं, कोई भी झारखंड में दो ही है,
हाँ हाँ
तो सारे बच्चे प्राइवेट में आपको फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 2 लाख 2.5 लाख है, तो हो सके बच्चे बीए के बाद 1 साल का कोर्स करना चाहे कम फीस लगेगा, उनके उनको आइडिया नहीं है, उनके गार्जियन अगर शिक्षित नहीं है तो उनको इंटर के बाद वो नहीं पढ़ाएंगे बीए, तो बीए करके आ सकते हैं, तो ऐसी बच्चों के लिए 2 साल का और 1 साल का होना चाहिए
राइट
बेनिफिट वगैरह।
ओके। और मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है कोविड से रिलेटेड, मतलब पिछले 2 साल से सभी कोविड से जूझ रहे हैं, तो आपके इंस्टीट्यूशन में कोविड के टाइम पे किस तरीके से कठिनाइयां हुई है, मतलब क्या अच्छा चला है और किन चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं?
देखिए जिससे पैसे आए, जैसे रूरल बेल्ट वाले बच्चे जो है उनको ऑनलाइन क्लासेस हम लोग किए तो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम, उनको थोड़ा मोबाइल चलाने लैपटॉप चलाने में कठिनाई का सामना कर पड़ रहा था, 20% बच्चे लोग। बाकी ऐसे बच्चे हैं जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेट इंटरनेट से दूर थे, तो वो लोग भी इसको यूज करना सीख गए हैं और धीरे धीरे ये लोग इससे ये हो गए हैं।
ओके ओके।
लेकिन 20% बच्चे ऐसे हैं जिन जो ना ठीक से कंप्यूटर चला सकते हैं ना लैपटॉप चला सकते हैं, यहाँ तक इतने पिछड़े हुए हैं उनको मोबाइल भी नहीं है,
राइट
तो
राइट।
उनके लिए नहीं है, बाकी के लिए अच्छी बात है।
ओके। तो मैम आपके फैकल्टीज ने किस तरीके से कोप किया है इस कोविड के टाइम पे?
हमारे फैकल्टी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटी करवाते हैं, और यूट्यूब से जूम से पढ़ाते हैं।
ओके। तो मैम ओवरऑल अगर पूछा जाए कि 2 साल में बीएड को किस तरीके से कोविड ने अफेक्ट किया है, तो आप क्या कहेंगे?
देखिए जो डायरेक्ट आपको प्रभाव टीचर का पड़ता है वो प्रभाव तो आपका स्टूडेंट से डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है,
हाँ
बच्चे टीचर को देख के, टीचर के करेक्टर को देख के, टीचर के एक्टिविटी को देख के, उनके डिसिप्लिन को पंचुअलिटी को देख के सीखते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बच्चे आपका यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंस बना लिए हैं, उसके बाद आपके साथ हैं कि नहीं है, और बच्चे कोई टीचर को नहीं फोकस कर सकता, अगर करता है तो टाइमिंग उसी में आउट हो जाएगा उसका 45 मिनट।
राइट राइट। ओके मैम। ओके समझ में आ गया। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।